नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉ अलेक्सेंडर स्टूब उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देंगे। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थव्यवस्था पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। इसमें 110 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस वर्ष का विषय है संस्कार, दृढ़ता, सामंजस्य और उन्नति। भारत और फिनलैंड के बीच आज नई दिल्ली में पर्यावरण सहयोग, प्रवासन और आवाजाही तथा सांख्यिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्सेंडर स्टूब के साथ कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है।
आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप दुनिया की दो बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फिनलैंड कानून के शासन, संवाद और कूटनीति में विश्वास रखते हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते से भारत और फिनलैंड के बीच व्यापार, निवेश तथा तकनीकी सहयोग और मजबूत होगा। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि देश युवा और सबसे गतिशील कार्यबल के साथ विश्व की वैश्विक कौशल राजधानी बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। नई दिल्ली में फिनलैंड के रोजगार मंत्री मतियास मार्टिनेन के साथ द्विपक्षीय बैठक में उन्होंने ये बात कही। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि चुनौतियों के बावजूद श्री मोदी भारत में आम लोगों तक कल्याणकारी कार्यक्रम पहुंचाने में विशेष ध्यान दे रहे हैं। श्री कार्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में वित्तीय सुधारों के माध्यम से करोड़ों लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने में सफलता हासिल की है। श्री कार्नी ने ये बातें कल सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख विचारक लोवी इंस्टीट्यूट में एक संवाद के दौरान कहीं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से बातचीत की। उन्होंने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर ओमान के विदेश मंत्री सैयद बदर बिन हम्माद बिन हमूद अल बुसैदी से भी चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में ईरानी दूतावास में भारत सरकार की ओर से शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। श्री मिश्री ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के निधन पर शोक व्यक्त किया। कई देशों के शामिल होने के साथ पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और तेज हो गया है। अमरीका और इसराइल ईरान पर हवाई हमले कर रहे हैं और ईरान मिसाइलों और ड्रोन से जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान समर्थित हिजबुल्ला भी ईरान के साथ हमलों में शामिल हो गया है। क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के लिए इसे खतरा बताते हुए कई देश चिंता व्यक्त करने के साथ स्थिति को शांत करने का आह्वान कर रहे हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार अजरबैजान ने आज ईरान पर अपने नखचिवान क्षेत्र पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया। कतर ने भी ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाया है। सऊदी अरब ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने कई ड्रोन नष्ट कर दिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने भी दावा किया है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने बैलिस्टिक मिसाइलों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है। आज सुबह ईरान ने इसराइल और अमरीका पर नए हमले किए। इस बीच ईरान ने इसराइल के दिमोना परमाणु संयंत्र को निशाना बनाने की भी धमकी दी है। इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हो गई है। अबूधाबी स्थित भारतीय दूतावास ने संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच सतर्क और शांत रहने, अधिकारियों के सुरक्षा दिशा निर्देशों और परामर्श का पालन करने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।